नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सहारनपुर तथा अजमेर में रैलियां, गाजियाबाद में भी रोड शो का कार्यक्रम, जयपुर में कांग्रेस की रैली। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और तटीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर के पास चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी जनसभा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के संबंध में आज जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे।
प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही राज्य स्तरीय नेता भी अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जगह जगह चुनावी रैलियां और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकनों की जाँच का काम पूरा हो गया है। दूसरे चरण के लिए राज्य की 13 लोकसभा सीटों के लिए 191 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं, जबकि 25 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को वे गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए आज कोझिकोड जाएंगे। वे शाम को अरियादातुपलम और मुथाकुलम के बीच एक रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदान 26 अप्रैल को होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 7 सीटों के लिए 93 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। जांच के दौरान 16 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। इस चरण के लिए सोमवार तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज सिंगरौली और सीधी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा आज अपने स्थापना दिवस पर सभी 65,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उधर कांग्रेस ने आज भोपाल में गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में संयुक्त प्रचार की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर और महू में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं खजुराहो से उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर समाजवादी पार्टी ने रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्रों में 55 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। 86 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की कल जांच की गई। केरल में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 204 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। 86 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी संजय कौल ने कहा है कि सोमवार को नाम वापसी के आखिरी दिन के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष मतदान केन्द्र होंगे। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में ठाणे जिले में सबसे अधिक 36 बूथ महिलाओं द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। इसके बाद जलगांव में 33 बूथ है, जबकि नासिक और रत्नागिरी में प्रत्येक में 30 बूथ होंगे और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में 26 बूथ होंगे। वाशिम, सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली जिलों में प्रत्येक में 3 बूथ होंगे। इन बूथों पर पुलिस समेत नियुक्त सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि इन बूथों को किसी खास रंग का उपयोग नहीं किया जाए। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े रंगों का उपयोग न करने की सलाह भी चुनाव आयोग ने दी है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन बूथों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाएगा। तहसील कार्यालयों, पुलिस स्टेशन और चुनाव अधिकारियों के संपर्क में रहने वाले बूथों का ही चयन इसमें किया जाएगा। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
असम के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से डिब्रूगढ़ एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल है और इस संसदीय क्षेत्रों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस संसदीय क्षेत्रों से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली को हटाकर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को नामांकित किया। असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल राज्यों में भाजपा के साथ गठबंधन में है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और असम जातीय परिषद पार्टी के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त विपक्षी मोर्चा असम के उम्मीदवार भी इस निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया। मनोज धनोवर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है और 4 समुदाय से आते हैं। डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्रों में कुल 16,50,706 मतदाता है और इनमें से 8,06,935 पुरुष और 8,43,771 महिलाएं और 33 तीसरे लिंग के मतदाता है। डिब्रूगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और असम जातीय परिषद के बीच दो तरफा लड़ाई देखी जा रही है। इस संसदीय क्षेत्र में 4 समुदाय के मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमिनुल हकजुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्र के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यनीतियां बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कल नई दिल्ली में 11 राज्यों के निगम आयुक्तों और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में बारामूला के उरी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास सबूरा नाला में आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 2 घुसपैठियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 2 एके राइफल, 4 ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा। बैंक के गवर्नर ने कहा कि 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा। फिलहाल यूपीआई का उपयोग धन के डिजिटल लेनदेन में किया जाता है। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य सरकार से उन किसानों को 25,000 रूपये प्रति एकड़ का भुगतान करने की मांग की है, जिनकी फसल सूखे की स्थिति के कारण सूख गई है। मीडिया से बातचीत में कल शाम उन्होंने सरकार से उन किसानों को मुआवजा देने की मांग की जिन्होंने फसल के नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने राज्य में जल संकट के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गजा में तत्काल युद्ध विराम और इसराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है। प्रस्ताव में गजा पट्टी में किए गए संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने का भी आह्वान किया गया। 28 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत सहित 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया और अमरीका तथा जर्मनी सहित 6 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। अमरीका के एक अधिकारी ने कहा है कि इसराइलियों को निशाना बनाने और अमरीकी संपत्तियों पर हमला करने की ईरान की संभावित तैयारी के मद्देनजर अमरीका में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों और अधिकारियों पर इसराइल के हवाई हमलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। भारत ने मालदीव को द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करने की स्वीकृति दे दी है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने इस कदम के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह भावना दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता, द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को विस्तार देने के प्रति सशक्त वचनबद्धता को दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता से पूछताछ की अनुमति दे दी है। के कविता को 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। मौसम विभाग ने पूर्वी और तटीय क्षेत्रों के लिए अगले दो दिन तक लू चलने की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज और कल लू चलने का अनुमान है। कर्नाटक के तटीय इलाकों और गोवा में कल तक गर्मी तथा उमस वाला मौसम रहेगा। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 9 अप्रैल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंधी और बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। झारखंड और ओडिशा में आज आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इस सप्ताह तक हल्की बारिश तथा बर्फबारी की स्थिति जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रहने की संभावना है। लक्षद्वीप और राजस्थान में आज हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं, जबकि केरल और पुदुचेरी में 11 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। अगले दो दिन में देश में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हैदराबाद में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद निखिल। वित्त वर्ष 2024-25 में मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक से जुड़ी खबरें अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, अभी नहीं बढ़ेगी होम और कार लोन की किस्त। देशबंधु और वीर अर्जुन ने जीडीपी में वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान दिया है। वहीं हिन्दुस्तान ने सुविधा शीर्षक से लिखा है, यूपीआई से बैंक खाते में नकदी जमा कर सकेंगे। जनसत्ता के अनुसार ग्रामीण मांग बढ़ने से आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद। देश में जारी राजनीतिक माहौल से जुड़े समाचार भी अखबारों में है। दैनिक जागरण लिखता है, होम वोटिंग से महासमर के मतदान का शुभारंभ। निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा दी। पंजाब केसरी के कारोबार पन्ने की खबर है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। राष्ट्रीय सहारा ने रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान प्रकाशित किया है, भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। दैनिक ट्रिब्यून ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, इस साल मेहरबान रहेगा मॉनसून, एल नीनो फीका पड़ेगा। नवभारत टाइम्स की खबर है, गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ही ट्रैक पर चलेंगी मेट्रो और हाई स्पीड रैपिड रेल, कुल 35 स्टेशन बनेंगे। हरी भूमि की पहली सुर्खी है, एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना लाइन का ट्रायल भी सफल, हफ्ते भर में मिलने लगेगी बिजली। हिंदुस्तान के अनुसार रामनवमी पर 15 से 17 अप्रैल तक श्रद्धालु 20 घंटे रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान आकर्षित करती है, वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, 3200 मेगापिक्सल से खींचेगा तस्वीरें।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज, प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सहारनपुर और अजमेर में रैलियां, गाजियाबाद में भी रोड शो का कार्यक्रम, जयपुर में कांग्रेस की रैली, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और तटीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।